नींद त्याग काल विचार सत स्वरूप खोजो जग सार। हम सब संसार में आकर भ्रम की गहरी नींद में सो रहे हैं। भ्रम क्या है? जितना मैं पुरुषार्थ कर लूंगा उतना संसार में मैं ज्यादा सुखी हो जाऊं। इस भ्रम को लेकर हर मनुष्य सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन जिसके अंदर विवेक की आंख है, जिसको कोई भ्रम नहीं है, उसको हम सतपुरुष कहते हैं, सतगुरु कहते हैं। वो कुछ दूसरी बात कह रहा है, लेकिन उसकी बात मैं सीख तक पाता हूं जब मेरा वास्तविक विश्वास गुरु पर होता है। सभी लोग किसी ना किसी गुरु को मानते हैं, संसार में समाज में बड़ी मान्यताएं हैं, लेकिन वास्तव में जिसका पूर्ण गुरु पर विश्वास है वो कोई कोई होता है। इसीलिए ये संसारी निर्णय है हमारी बुद्धि के, इसमें क्या गलती हो रही है उसका ठीक ठीक यदि पता लगाना ही है तो आपको सदगुरु की बात, सतपुरुष की बात सुननी पड़ती। वो बात किस रूप में आती है आपके सामने? या तो ठीक ठीक आमने सामने भेंट हो जाए, या फिर उसके द्वारा जो वाणी प्रकट हुई है, शास्त्र प्रकट हुए हैं, उनको पढ़ने का सौभाग्य मिले, और फिर ये निश्चय हो बुद्धि में पढ़ने से पहले कि मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सत्य निर्णय पढ़ रहा हूं। क्योंकि जो सतपुरुष की वाणी है, सतपुरुष का जो विचार है या सतपुरुष का जो लेख है, वो निर्णय करता है, और उस निर्णय को संसार के किसी भी काल में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए आज तक जो भी, जिसको हम रेवलेशन बोलते हैं, जिसको हम वाणी बोलते हैं, वो सतपुरुष के जो वचन है या वाणी है, उस पर ही सारे जगत में शास्त्रार्थ होते हैं, डिस्कशन होता है, लेकिन उस निर्णय को कोई बदल नहीं सकता। ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है इस बात का या मान्यता। इसीलिए पढ़ाई की जाती है तो सतपुरुष की बात को ही पढ़ा जाता है ताकि हमको सही सही वहां से निर्णय पता लग सके। मैं कितने भी लेक्चर आपको दे दूं, लेकिन प्रमाण यदि सतपुरुष की बात का ना दूं तो मेरी बात का कोई महत्व नहीं रह जाता। वो लोगों की बात हो जाती है, आपकी बुद्धि निर्णय कभी नहीं करेगी, आपकी बुद्धि में एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। यदि कहीं आएगी भी तो कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे, क्योंकि आपको यही ध्यान रहेगा मैंने तो मनुष्य की बात सुनी थी। तो एक मनुष्य की बात मान लोगे, दूसरे की आप जो है काट दोगे, तो आपकी बुद्धि किसी भी ठीक ठीक निर्णय पर नहीं पहुंच सकती। तो यदि जीवन का आपने सौदा ही करना है, जीवन को आपने एक सही निर्णय पर लगाना ही है, तो फिर सतपुरुष की बात को सीखना होता है और उस पर पक्का निश्चय करके फिर उस मार्ग पर चलना होता है। तो देखिए कि सारा संसार पुरुषार्थ कर रहा है, संसार में मैं जितना पुरुषार्थ कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा, इस निश्चय को लेकर। लेकिन जो ईश्वरीय वाणी है वो क्या निर्णय कर रही है? वो कह रही है दुख में ही नर जन्मया, दुख में जन्म गवाए, मंगत देहधारी जो आया तीन काल दुख पाए। अब बताइए इस निर्णय के आगे आपकी कौन सी होशियारी, कौन सी चलाकी, कौन सा पुरुषार्थ आपको संसार में सुखी कर देगा? विचार करके देगा, क्या आपकी बुद्धि इस निर्णय को काट सकती है? जो ईश्वरीय वाणी है, सारे जगत का मालिक है, सारे जगत को वो चला रहा है, मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है, सारे जगत के मनुष्य मिलकर भी इस संसार को नहीं चला सकते। इस संसार की प्रकृति का नाश तो कर सकते हैं, उसका पतन तो कर सकते हैं, लेकिन इस संसार को वो चला नहीं सकते। इस कुदरत का जो मालिक ईश्वर है, उसने ही इस संसार को चलाया। यदि मैंने जीवन में ठीक चलना है, बुद्धि का निर्णय ठीक करना है, तो मैंने सतपुरुष की बात को सीखना ही होगा। इसीलिए जितना जल्दी मैं सीख लूं उतना मेरा जो टाइम की जो वेस्टेज है, टाइम जो नष्ट कर रहा हूं संसार के निश्चय धारण करके और सुख प्राप्ति के लिए जी रहा हूं, इस निश्चय को मेरी बुद्धि बदल देगी। तो फिर आपका निश्चय वही होगा जो ये वाणी कह रही है, दुख में ही नर जन्म या दुख में जन्म गवाए, मंगत देह धारी जो आया तीन काल दुख पाए। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये तीन काल है। पास्ट में भी तुझे दुख मिला है, प्रेजेंट में भी तो बेचैनी से गुजर रहा है, फ्यूचर में भी तेरी यही हालत होनी है, इसके अलावा कुछ प्राप्त नहीं होना। तो हम सोचते हैं जो मेरे मन में इच्छा है, जैसा मेरा स्वभाव है, उसके अनुसार यदि घर की व्यवस्थाएं हो जाए, समाज की व्यवस्थाएं हो जाए, तो मैं जरूर सुखी हो जाऊंगा। लेकिन हमको ये पता नहीं, तू पूरी तरह से इस प्रकृति के हाथ में या ईश्वर के हाथ में गुलाम है, पूरी तरह से तू गुलाम। मिलेगा क्या तुझे? तेरे प्रयास के अनुसार उसको मिलेगा, लेकिन तू शिकार किस चीज का होता है? तेरे मन के अंदर जो डिजायर होती है, जो इच्छाएं होती हैं, तेरे स्वभाव के अनुसार, तेरे संस्कारों के अनुसार, उन इच्छाओं की पूर्ति में तू सुख की तलाश करता है। और हर व्यक्ति देखते हैं आपने, कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं मिलेंगे, परिवार में भी हो, अपने ही बच्चे हो, वो दो एक जैसे नहीं होंगे। एक का स्वभाव कुछ और तरह का हुआ, दूसरे का कुछ और तरह का हुआ, एक कुछ और चाहेगा, दूसरा कुछ और चाहेगा। संसार में लोग पैसा कमाते हैं, एक दो ही मेथड से नजर आते हैं, या सर्विस कर लो या बिजनेस कर लो या मजदूरी कर लो। किसी की गुलामी मत करो, मजदूरी कर लो, लेकिन मजदूरी भी क्या बिना गुलामी के मिल जाएगी? तो आपको किसी के अधीन रह के ही तो काम करना पड़ेगा, और जिसकी अधीनता है उसकी बात माननी पड़ेगी। और आपको सुख की प्राप्ति कब होती है? जब आप स्वतंत्र रूप से, जब आपकी इच्छा पूरी होती है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा मुझे मिल गया, तब आप सुख महसूस करते हो। तो प्रकृति में रह के क्या यह संभव है? बचपन से लेके आज तक जब से आपने होश संभाला है, आप खुद देख लो कितने प्रकार की इच्छाएं आपकी बदल चुकी हैं। इतना जीवन मैंने व्यतीत कर लिया, यदि ईमानदारी से, बुद्धिमानी से मैं इसका एनालिसिस करके देखूं, तो मैं अपने जीवन से आज तक तो संतुष्ट नहीं हो पाया। हाँ, संतुष्ट होने की प्लानिंग जरूर चल रही है, उसकी तैयारी भी चल रही है, भविष्य में तो मुझको जरूर मिल जाएगा, इस निश्चय के साथ मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूं। लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी संसार में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वाणी गलत आपको नहीं सिखाई। वाणी का जो निर्णय है, इसको विवेक कहते हैं। बिना विवेक मनुष्य जो होई पशु समान जीवन सो होई। जिस प्रकार पशु के अंदर बुद्धि कौन सी है? अज्ञानी बुद्धि है, वो जानते निर्णय ठीक ठीक कर ही नहीं सकता। जैसा स्वभाव है, जैसी इच्छाएं हैं, उसके अनुसार घूमता रहता है और जीवन व्यतीत करता रहता है। एग्जैक्टली मेरी भी यही हालत है। यदि शास्त्र का निर्णय मेरी बुद्धि में बैठा ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं समझता, तो मेरा भी पशु जीवन ही है, शरीर मनुष्य का है, बस ये अंतर। और एक और खोट मेरे अंदर, पशु प्रवृत्ति तो है पशु के अंदर, लेकिन पशु अपने जीवन में पूरे जन्म में एक पाप भी नहीं करता, क्योंकि प्रभु ने उसको वो बुद्धि नहीं दे रखी है जिससे वो शास्त्र को पढ़ सके और सत्य क्या है, ठीक क्या है, उसका पता लगा सके। लेकिन मनुष्य को वो निर्णय करने वाली बुद्धि प्रभु ने दे रखी है, इसीलिए मनुष्य के लिए ये शास्त्र प्रकट होते हैं, मनुष्य के लिए गुरु अवतार बनकर आपके सामने आता है, आपके मार्गदर्शन के लिए, और उसकी मैं जरूरत ही नहीं समझता। तो फिर आपका जीवन वास्तव में शास्त्र के अनुसार पशु से भी नीच कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि आप मनुष्य जन्म लेकर पाप भी करते हैं, आपका पतन हो जाता है। पशु का पतन कभी नहीं होता, कोई संभावना नहीं है, 1% भी संभावना नहीं है कि पशु का पतन हो जाए। आज जिस प्रकार का जन्म है, अगला जन्म उसमें इससे बेटर होना ही होना, क्योंकि वो केवल कर्म फल भोग रहा है, सजा भोग रहा है। सजा जब भोग लेता है इंसान, तो जेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ना उसके लिए। तो पशु भी जेल में बंद है, एक तरह से कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। फिर उसको मनुष्य योनि प्राप्त हुआ, वहां स्वतंत्र निर्णय वो ले सकता है, वाणी समझ सकता है। तो ये जो परमानेंट दुख मेरे साथ बंधा हुआ है प्रकृति का या प्राकृतिक जीवन का, इससे मैं मुक्त हो सकता। इसीलिए सचमुच की बात ध्यान रखें, अपने मन के निश्चय को छोड़ दें कि मैं बच्चों को सुखी कर दूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा या समाज को सुखी कर दूंगा। इसलिए याद रखिए, संसार में हम जो व्यवहार करते हैं उसको कहते हैं आर्थिक व्यवहार या स्वार्थ वाला व्यवहार, बस वो काम चलाने मात्र के लिए होना चाहिए, उतना तो सोचे नहीं इंसान। लेकिन बाकी याद रखना चाहिए, भाग में जो है वही मिलेगा जिसको प्रारंभ। तो मनुष्य दो कारण से परेशान होता है, दो कारण से दुखी होता है। एक तो अपनी इच्छाओं के कारण दुखी होता है। आपको पता है कि इच्छाएं तो आप मन में पैदा हो जाती हैं, लेकिन उसको पूरी करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं, उसके पश्चात भी कोई गारंटी नहीं है कि पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आपके अंदर कैपेबिलिटी ही है, कैपेबिलिटी भी है, कल को शरीरी रोग ही हो गया, आपका कोई एक्सीडेंट ही हो गया, इतनी बाधाएं हैं कि देख दे देखते आदमी इसलिए कहता ही नहीं कि अपनी इच्छा पूरी कर सकते। इच्छा पैदा तो आपके मन में हो जाती है, पूरी होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। पूरी हो भी गई उसके बाद भी यदि आप संतुष्ट हो गए भी नहीं हो गए इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इच्छाओं का स्वरूप निरंतर बदलता रहता है। इसीलिए सब कुछ कहते हैं कि मनुष्य के मन के अंदर जो सांसारिक इच्छाएं या सुख भोग की इच्छाएं होती हैं, ये मनुष्य का बंधन है। दूसरी चीज क्या कि मनुष्य का शरीर प्रारब्ध के अधीन, जब शरीर प्रारब्ध के अधीन है तो शारीरिक परिस्थितियां और शारीरिक कर्म जो आपके संसार में होंगे और उसका जो परिणाम होगा वो प्रारब्ध डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं कर सकते। प्रारब्ध आपको वैसा करने के लिए मजबूर कर देगा, तो आप प्रारब्ध के कारण इस शरीर के गुलाम, मन बुद्धि आपकी है, वो इस शरीर से स्वतंत्र है, लेकिन मैं अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए ही शरीर का उपयोग करता हूं। इसीलिए जो है ये बात याद रखिए कि क्योंकि दो गुलामी मेरे अंदर है, एक तो इच्छाओं की गुलामी जो सारी जीवन पूरी करते हुए भी मैं कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, दूसरी प्रारब्ध की गुलामी जो मेरे हाथ में नहीं है, शरीर कहाँ पैदा होगा, किसके घर पैदा होगा, जो भी होगा या स्वस्थ होगा कुछ पता नहीं, शरीर करके मैं गुलाम हूं, इच्छा करके भी मैं गुलाम हूं, इसलिए यही मेरा दुख है। इसलिए कह रहे हैं कि दुख में ही नर जन्म या दुख में जन्म गवाए, मंगत देहधारी जो आया तीन काल दुख पाए। अब इससे मुक्ति का रास्ता क्या है? संसार तो रास्ता ही नहीं, रास्ता एक ही है जिसको गुरु बता रहा है। वो क्या रास्ता बता रहा है? अन हुआ और जो होगा, जो अभी हो नहीं पाया है जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हो और जो हो चुका है, अन हुआ और जो हुआ प्रभु आज्ञा में देख, उसको तू प्रभु हुक्म में देख। ये मेरे प्रारब्ध में था, वही प्रभु का हुक्म था इस शरीर के लिए, मेरे लिए, तो वो तो हो गया और कुछ नहीं भी हुआ इसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। लेकिन होगा कैसे? वो होगा प्रारब्ध के अनुसार ही, जो हो गया वो भी प्रारब्ध के अनुसार हुआ, जो होगा वो भी प्रारब्ध के अनुसार होगा। इसलिए कह रहे हैं कि अन हुआ और जो हुआ प्रभु आज्ञा में देख, अर्थात प्रभु आज्ञा में देख, बुद्धि होए सुतंत्र सत सिमरन पर से लेख। इसका लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा तेरी बुद्धि स्वतंत्र हो जाए इस संसार के बंधन से, संसार के क्लेश से। जब तू इसको प्रभु हुक्म के हुक्म में देखने की आदत पड़ जाएगी तेरी, तब बुद्धि इसके चिंतन से आजाद हो जाएगी। फिर क्या करेगी वो? सत सिमरन पर से देख, फिर प्रभु का जो हुक्म है, प्रभु का जो मार्गदर्शन है, गुरु का जो मार्गदर्शन है, तू अपनी इस बुद्धि को सत सिमरन में लगाएगा। अर्थात तेरी बुद्धि का निर्णय ये हो चुका होगा कि संसार तो प्रभु के अधीन है, इसलिए इसमें ज्यादा क्या प्लानिंग करें, जो होना है उसके लिए प्लानिंग करने के लिए भी आज मजबूर हो जाओ, वो तो होगा ही होगा। लेकिन हम बेचैन होते हैं, जो नहीं होता है उसके कारण बेचैन होते हैं, और जो नहीं होने वाला पार्ट है लाइफ का, वो आपका संग कभी नहीं छोड़ता, मौत आने तक सदैव आपके अंदर ये भावना बनी रहती है कि ये काम और हो जाता तो मैं सुखी हो जाता, ये काम और हो जाता, जैसा हम सुन रहे थे कि तो मैं संतुष्ट हो जाता, वो दिन आपके जीवन में कभी आता ही नहीं। क्योंकि आज जो मन में आपकी इच्छा है वो पूरी हो भी जाए तब भी आप संतुष्ट नहीं हो गए, ये इच्छा पूरी होने के बाद आपको पता लगे, क्योंकि लाइन में लगी हुई इच्छाएं, अगले का नंबर आ गया जो नंबर वन पर है, नंबर दो पर खड़ा हुआ दूसरा। इसलिए मनुष्य संसार में अपनी इच्छा पूरी करके कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, ये पूरी प्रकृति का विधान है। इसलिए महर्षि रमण से जब एक व्यक्ति पूछ रहा है उनसे, महर्षि ये चीज बताइए, ईश्वर खुद तो आनंद रूप है, शांति रूप है, लेकिन संसार में उसने इतना दुख क्यों पैदा कर दिया कि सारे लोग दुखी हैं, यहां सारे लोग बेचैन हैं। तो ऋषि क्या उत्तर देता है, प्रभु क्या उत्तर दे रहे हैं, गुरु क्या है, ये बोलता हुआ ईश्वर, गुरु में ईश्वर में एक ही अंतर है, ईश्वर आपको दिखाई नहीं पड़ता लेकिन मन बुद्धि के अनुभव में आ सकता है, देह के अंदर ही मौजूद है। कृत देशे अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मेरे तेरे हृदय में तेरे अंदर ही विराजमान है, वहां तो मुझको प्राप्त कर सकता है, मेरा अनुभव कर सकता है, लेकिन संसार में वो दिखाई नहीं पड़ता। तो इसीलिए वो जब कहते हैं कि प्रभु खुद तो आनंद रूप है, अंदर जिसने उसका अनुभव किया वो उसका मन आनंद से भर जाता है, लेकिन संसार में इतना दुख क्यों पैदा कर दिया, तो गुरु क्या कहता है, प्रभु ने संसार में दुख इसलिए पैदा किया है ताकि तू अंतर्यामी ईश्वर की ओर बढ़ सके। इसलिए ईश्वर का विधान ही यह है, तू संसार में कितना भी पुरुषार्थ कर ले, कितने जन्म ही पुरुषार्थ क्यों ना करता रहे, लेकिन तू कभी भी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, ये पूरी प्रकृति का विधान है। इसलिए गीता में पढ़ के देखिए, बोलते हैं गुणा गुणे शुभर्तन, गुणों गुणों में वर्त रहे हैं, गुण क्या है, वो सतो गुण रजो गुण तमो गुण, तीनों गुणों से प्रकृति बनी है और तीनों गुणों से ये अधीन प्रकृति चल रही है, और इन तीनों गुणों का आपस में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। फिर बताइए आपकी इच्छाओं की वैरायटी हमेशा बदलती रहेगी, तो तेरी बेचैनी कभी समाप्त नहीं होगी, वो दिन तेरे जीवन में कभी आएगा ही नहीं जहां तेरे हजार जन्म तीनों हजार वर्ष जन्म मिल भी जाए कि तू संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, वो दिन तेरे जीवन में आ ही नहीं सकता। वो जीवन में उसके दिन आता है जो अंतर्यामी ईश्वर की उपासना करता है गुरु के मार्गदर्शन अनुसार और उसकी ओर अग्रसर होने की कोशिश करता है, जो मन के अंदर बाहर की वासनाएं उठ रही है, बाहर की इच्छाएं उठ रही है, उसमें महाराज जी मार्गदर्शन कर रहे हैं प्रेमी सादगी धारण। सादगी का सीधा सा मतलब होता है जो तेरी आवश्यकता है उसके लिए पूर्ण करने की जरूर कोशिश कर, कोई मना नहीं कर, लेकिन उसको भी प्रभु के अधीन देख, प्रभु के हुक्म के अंतर्गत देख, प्रारब्ध के अधीन देख, हो भी सकती है पूर्ण, नहीं भी हो सकती, लेकिन मैंने जो सोचना है, मेरा सोचने का तरीका है वो ये होना चाहिए कि मेरी मूलभूत आवश्यकता पूरी हो जाए, इतना तो मैंने सोचना ही है, उसके लिए कोशिश करनी है और उसके लिए कोई मना भी नहीं करता, लेकिन मैं जो संसार में अपने बच्चों को सुखी करने के लिए, खुद को सुखी करने के लिए, उसमें संतोष की जो दर्शन करता हूं, ये मेरा वहम है, ये मेरी भूल है, ना मैं आज तक संतुष्ट हो पाया, ना कभी मेरी संतान कभी जीवन में संतुष्ट हो पाया, जो संतुष्ट हुआ अंदर जाकर हुआ, बाहर कोई संतुष्ट नहीं हुआ। इसीलिए वो अंतिम बात कह रहे हैं, सकल जतन नर मिथ्या, देखिए ईश्वर का निर्णय आपके लिए है, सकल जतन नर मिथ्या, जीव को देवे कलेश, नाम भगत तत्व सार है, सुन साचा संदेश। कहीं से तो सीखोगे, इससे बड़ा सत्य आपको कहां मिलेगा कि प्रभु कुछ बोलकर आपको वाणी के रूप में बता रहे हैं। सकल जतन नर मिथ्या, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संसारी यत्न करता है सब मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? जीव को देवे कलेश, तो जितनी कोशिश करेगा, जितना पुरुषार्थ करेगा, तेरा कलेश बढ़ता चला जाएगा, तेरी मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी। तो बड़ी से बड़ी पोस्ट पे पहुंच जा, उसको वहां जाके पता लगेगा कि मुझको तो दो मिनट की फुर्सत नहीं अपने बारे में सोचने की, तो बिजनेस को बढ़ाता चला जा, फिर पता लगेगा मैं कहां फंस गया, मैं ऐसी जगह आ गया। कहते ना, तत्ता दूध ना निगलने का ना उगलने का, गर्म दूध अंदर चला जाए कि ना उसको पी सकते अंदर ना बाहर उगल सकते, जली जाओगे। तो संसार में जो प्रगति का लक्ष्य लेके इसने कदम बढ़ाया और अपना जीवन उसमें लगाया, स्पेंड किया उसके अंदर, तो स्पेंड करने के बाद पता लगता है मानसिक क्लेश ने तो मेरा पीछा नहीं छोड़ा। पहले जब कमाई कम थी तो छोटे छोटे क्लेश होते थे, कमाई बढ़ गई तो बड़े बड़े क्लेश होते हैं। पहले सैकड़ों के घाटे होते थे, हजारों के घाटे होते थे, अब लाखों के घाटे होते हैं। आपके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं दिमाग में चल रहे हैं वो आपकी जिंदगी को नष्ट ही कर रहे हैं। मनुष्य जन्म इतना कीमती है, जिस वास्ते मिला था ये वो मैं काम कराई नहीं मैंने, और सेटिस्फाई इसलिए हो जाता हूं क्या करूं, प्रभु ने मुझे ऐसी दुनिया दी ही नहीं जहां उसको वक्त मिलता आराम से न तो होकर याद करना। अरे मूर्ख, प्रभु ने सब कुछ दिया, तू ही लालच में आकर, तू ही विकारी लोगों के बीच में पला है और उनकी तेरी संगत है, इसलिए उनके हिसाब से लक्ष्य तैयार कर लेता है, और तेरा जन्म, तेरा जो मिला था इतना कीमती जन्म, ये खत्म हो निरर्थक चला जाता है। संतोष की कमाई के लिए जन्म मिला था तो असंतुष्ट होकर संसार से विदा हो जाता है। इसलिए ये गलती ना करें, सत्पुरुष की बात याद रखिए कि सकल जतन नर मिथ्या, जीव को देवे कलेश, नाम भगत तत्सार है, सुन साचा संदेश। ये सत्य संदेश तेरे लिए है, आज भी तुमने यदि इसको नहीं माना तो बाकी जो जन्म बचा है वो भी तेरा बर्बाद हो जाएगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए गुरु की बात को, शास्त्र की बात को, वाणी की बात को हम टाल नहीं सकते, उसको मैंने एक दिन सीखना ही है। इसलिए जितनी जल्दी सीख लें, अपनी बुद्धि के निर्णय को बदल लें, उतना ही मेरा जल्दी कल्याण हो जाएगा। ओम बन सकता।